वह इद कॉल है, और इद, इद से जब भी इज आएगा ना, ये इंग्लिश वाला इज नहीं है, ये अरबी वाला इज है। इज का मतलब होता है याद करो, गुज़िश्ता जमाने में कोई बात गुजर चुकी हो ना, उसको हम कहते हैं ना याद है ऐसे होता था। तो वो जो याद है ऐसे होता था, वो वर्ड यहाँ पे अरबिक में क्या है, इज। ठीक है, तो आयत नंबर 12 में जो हमने पढ़ा था कि मीसाक अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से लिया था, उन्होंने फिर उस मीसाक के साथ क्या किया वो भी आ चुका है। उन पर लानत की गई, उनमें कितनी खराबियां आ गई। तो अब आयत ये जो आ रही है, इसमें उनकी अहद शिकनी, जो उन्होंने अहद तोड़ा है, इसकी कुछ शक्ल बताई जा रही है कि उन्होंने कैसे अहद तोड़ा। तो सबसे पहले तो बताया जा रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे क्या कहा। मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, इद व इद कौला मूसा, जब कहा, और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, लि कौमी, अपनी कौम से, या कौमी। अब देखें पैगम्बरों का तरीका ना, इतना प्यारा तबलीग करने का तरीका है कि अपनी कौम को कैसे वो एड्रेस करते हैं। जैसे हम कहें अपने बच्चे को, एक नाम लेके भी कह सकते हैं और एक कह सकते हैं मेरे बेटे। अब इसमें मेरे बेटे कहने में और नाम लेने में, मसलन उमर है, कासिम है, तो इसमें फर्क है ना। इस तरह वो कहते हैं ये वो या बनी इसराइल, ए लोगो, ये नहीं कह रहे, मेरी कौम, ए मेरी कौम, उद्कुरु नियमत अल्लाह अलैकुम, अल्लाह की नेमतों को याद करो जो उसने तुम पर नेमतें की, जो उसके इनामात है तुम्हारे पर। देखिए याद दहानी की ना सबको ही जरूरत होती है, इंसान भूल जाता है, इंसान है, इंसान ही है ना, इंसान का मतलब ही है भूल जाने वाला। तो हमें भी बार बार रिमाइंडर चाहिए होते हैं, इसीलिए देखिए कुरान भी हमारे लिए रिमाइंडर है, अजिक्र है, इसका एक नाम अजिक्र है, कि ये रिमाइंड कराता रहता है हमें। इसलिए आप देखें कुछ अरसा ना पढ़ें तो आपको रिमाइंडर मिलने भी बंद हो जाते हैं। यही हमने ये पढ़ा है ना कि सुबुल सलाम हमें दिखाता है, सुबुल सलाम नजर आने बंद हो जाते हैं, उनकी तौफीक, उनको उन नेकियों को करने की तौफीक मिलना बंद हो जाती है, क्योंकि रिमाइंडर ही नहीं आ रहे होते। जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से, उन्होंने भी यही कहा था, याद करो अल्लाह की नेमतों को जो तुम पे हैं। बहुत बड़ा एक इनाम अल्लाह ताला का इनके ऊपर ये था कि जब अल्लाह ताला ने इनके जरिए तौहीद का पैगाम दिया इनकी कौम को, तो ये तौहीद की दौलत इन तक पहुंची, बाकी सारी दुनिया देखें शिर्क में थी और ये तौहीद का पैगाम लिए हुए थे। तो सबसे बड़ी तो ये बात है कि अल्लाह ताला ने इन तक अपना पैगाम दिया, ये कितना बड़ा इनाम है। तो फरमाए इज जाला फीकुम अंबिया व जालकुम मुलुका, कि ये नेमत याद करो कि जब अल्लाह ताला ने तुम में अंबिया भेजे, यानी अंबिया तौहीद का पैगाम तुम में लेकर आए, अल्लाह की बात तुम तक पहुंचाई, तो ये कितनी बड़ी नेमत होती है कि किसी तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंच जाए, अल्लाह उनमें अपना एक नुमाइंदा भेजे जो उनको अल्लाह की बात बताएं, जो उनको अल्लाह से जोड़ें, जो उनको अल्लाह की तरफ बुलाएं। ये अल्लाह की बहुत खास नेमत होती है किसी कौम के ऊपर। तो ये इनाम कहा गया, ये नेमत कही गई, अल्लाह की नेमत को याद करो। तुम में अंबिया आए हैं, तो अंबिया कौन कौन आए थे आप देखें कि इनसे पहले, मूसा अलैहि सलाम से पहले यूसुफ अलैहि सलाम, याकूब अलैहि सलाम, इसहाक अलैहि सलाम, इब्राहिम अलैहि सलाम, और भी बहुत सारे पैगंबर इनके अंदर गुजरे थे। तो तुम में अल्लाह ताला ने पैगंबर भेजे हैं। अब वजालकुम मुलुका, और तुम्हें बादशाह भेजे, तुम्हें बादशाह बनाए, बनाया तुमको बादशाह, यानी बादशाहत भी तुम में आई। देखिए मूसा अलैहिस्सलाम ये बात कह रहे हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम से पहले किसको बादशाहत मिली हुई थी इनमें, यूसुफ अलैहिस्सलाम को। अब वो पता है ना वो हिस्ट्री के, असल तो इनका जो वतन था वो फलस्तीन था याकूब अलैहिस्सलाम का, लेकिन जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बड़े आदमी बन गए, तो फिर उन्होंने सारे अपने भाइयों को, बाप को, सबको मूव करा दिया था वहां से, तो मिस्र ही उनमें आके फिर वो रहने लगे थे, और फिर तब से यही आबाद थे। तो जो सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम है, वो भी बादशाह इनमें आए, मगर वो मूसा अलैहिस्सलाम के तो बाद ही आए हैं ना, वो अभी मूसा अलैहिस्सलाम बात कर रहे हैं अपने लोगों से। तो अल्लाह ताला का ये भी इनाम है कि तुम्हें बनाया बादशाह। अब हम बाज दफा हमारे यहाँ कहते हैं कि इस्लाम में बादशाहत नहीं है और बादशाहत हराम है और इस तरह है, और खिलाफत होनी चाहिए या जमहूरियत होनी चाहिए या फलां, जो भी कोई किसी का जहन होता है। तो इस्लाम ने तर्ज़े हुकूमत की इतनी बात नहीं की है कि ये वाली हुकूमत वाला सही है, इसलिए कि सुलेमान और दाऊद अलैहिस्सलाम भी बादशाह थे। मगर हाँ, इस्लाम ये जरूर कहता है कि चाहे बादशाहत है, चाहे खिलाफत है, या जो भी मॉडल है आपका, उसके अंदर फोकस किस पे होना चाहिए कि अल्लाह ताला के अहकामात को नाफिज किया जाए, अल्लाह की शरीयत पे चला जाए, अदलो इंसाफ हो उसमें। ठीक है, तो इनमें भी एक, जिसको ये लोग कहते हैं किंग्स पीरियड कहते हैं, इस पे बड़ा फख्र करते हैं, इनमें वो भी एक आया था कि बादशाहत बादशाहत चलती जा रही थी। तो इट सेल्फ मलूकियत, यानी हम कह सकते हैं कि इट सेल्फ कोई बुरी चीज नहीं है, अगर वो भी मलूकियत ऐसी हो कि जैसी जैसे बादशाह रहे हैं, जैसे ये पैगंबर थे। तो एक तो ये माना हो गया। दूसरा माना है इसका क्या, अब देखें यहां पे कहा गया वजालकुम मुलुकन, बनाया तुमको बादशाह, तो हर एक को उनमें से तो नहीं बादशाह बना दिया था। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे बस तफासीर में है कि इससे मुराद है इख्तियार अता फरमाना, कि अल्लाह ने तुम्हें इख्तियार दिया, यानी अपनी जो जो जिसकी जितनी हैसियत है उसमें जो उसका इख्तियार है होना, ये भी अल्लाह का एक इनाम होता है। ये अलग बात है कि कोई उस इख्तियार को मिस यूज करता है या उसको अब्यूज करता है, तो अथॉरिटी होना, पोजीशन ऑफ पावर में होना, ये भी अल्लाह की एक नेमत होती है। हाँ, हर नेमत के साथ आजमाइश होती है, इंसान इसके बाद क्या करता है, अदलो इंसाफ करता है या फिर जुल्म करने लग जाता है। मसलन पैसा भी एक नेमत है, औलाद एक नेमत है, ओहदा एक नेमत है, ये सब नेमते हैं ना, तो इनके साथ भी आजमाइशें लगी हुई है। इसी तरह अथॉरिटी पावर, ये भी एक नेमत है, मगर इसमें साथ आजमाइश है, इम्तिहान होता है इंसान का। तो ये नेमत तुम्हें दी गई कि तुम्हें इख्तियार दिया, तुम अपनी जगह पे बा इख्तियार रहे हो, और ये तुम्हारे ऊपर अल्लाह की नेमत रही है। तो देखें आपकी, इनके ऊपर अल्लाह ताला ने जो मनोसलवा नाजिल फरमाया, चश्मे फूटे इनके लिए, इनको बादलों का साया दिए रखा, तो अल्लाह ताला ने इनको इख्तियार दिया ना। और फिर एक और बात इसके अंदर है, बादशाह का मतलब सिर्फ बादशाह होना, वो वाला बादशाह नहीं कि मुल्क के ही बादशाह हो तो बादशाह है, बल्कि हदीस में आता है जिसके पास घर हो और खादिम हो वो बादशाह है, यानी जिसके पास इतनी फरावानी हो कि घर भी है उसके पास, उसकी छत है और खादिम है। और एक और हदीस में आता है कि जिन लोगों लोगों में से जिनके पास खादिम है, सवारी है और बीवी है, वो बादशाह है। और एक और हदीस में आता है, तुम में से जो इस हाल में सुबह करे कि इसके अहल और माल की तरफ से वो मुतमईन हो और जिस्मानी तौर पर भी सेहतमंद हो और दिन का खाना उसके पास हो, तो उसको दुनिया अपनी तमाम नेमतों के साथ मिल गई। क्या क्या हो, घर वाले ठीक ठाक है ना, घर वाले ठीक ठाक है, माल मसलन जॉब है या बिजनेस है वो भी ठीक है, आप हेल्दी भी हैं और आज के दिन का खाना भी आपके फ्रिज में पड़ा हुआ है, आपके पास खाने का राशन मौजूद है, समझ लें आपको तमाम दुनिया की नेमतें मिल गई। ये भी समझ लें कि आप बादशाह ही हैं। अब हम कहें आए मेरे पास तो नौकर है नहीं, हमारे तो यहाँ पे नौकर नहीं होते। भाई नौकर नहीं होते तो आपके पास कोई मशीनें हैं जो आपके लिए नौकर का काम करती है, मशीनें भी नहीं है किसी के पास, तो फिर भी अपने आजा सलामत है ना जिनसे आप काम कर सकते हैं, तो ये भी एक बादशाहत ही है। और यकीन जाने एक बात आप लोग भी मानेंगे कि अगर पुराने दौर के बादशाह आके हमें देख ले ना, तो वो कहेंगे कि हमारी बादशाह से ज्यादा तो ये बादशाह है, जहां बैठे हुए हैं गर्मी है तो पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं, सर्दी है तो हीट चल रही है, बर्तन किस्म किस्म के हैं, आप वार्डरोब्स अपनी खोलें तो मैं हदीस पढ़ रही थी कि सुभान अल्लाह हदीस, देखो हम ऐसी हदीसों को तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या एक कपड़े में नमाज हो सकती है, क्योंकि सहाबा इतनी उनमें गुर्बत थी कि कभी एक ही कपड़ा होता था वो बांध लेते थे ये जो गर्दन के पीछे लपेट के उसको गिरा लगा लेते थे, क्या उसमें नमाज हो सकती कि नहीं। यानी ऐसे मसाइल उनको क्यों आए, क्योंकि उनके पास नहीं थी इतनी कशाई कि एक से ज्यादा ही कपड़ा बना लें, या दो कपड़े हो, एक नीचे बांध दे एक ऊपर पहन ले। हमारे सोने के कपड़े अलग, घर में पहनने के कपड़े अलग, कोई वैसे हम बाहर जा रहे हैं तो उसके अलग है, दावतों पे पहनने के अलग है, शादियों पे पहनने के अलग है, एक्सरसाइज करें तो उसके अलग है, मतलब हर तरह के, गर्मियों के अलग है, सर्दियों के अलग है, कितनी कशाइश है, बादशाही की तरह ही रह रहे हैं। और क्या बादशाही होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया सवारी है, घर है, किसी के पास खादिम है तो वो भी बादशाह है, किसी के पास जॉब है, उसके घर वाले ठीक ठाक है, वो हेल्दी है, वो भी, उसके भी सारी नियमतें मिल गई, तो ये बादशाहत से कम है क्या जो हम जिंदगियां गुजार रहे हैं। फिर भी हमारी शिकायत कितनी होती है, जबकि एक नबी क्या अपनी कौम से फरमा रहे हैं तो मेरे पास ये चीजें हैं ना, तो अल्लाह की नेमतों को याद करो, क्योंकि याद करने से एहसान मंदी होती है। जब इंसान नेमतों को याद करता ना तो हाय वाय खत्म हो जाती है, क्योंकि उसको होता है ना ये मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, अब मैं किस बात पे हाय वाय करूं, किस बात पे मेरे रोने हैं। तो जब नेमतें ज्यादा नजर आए तो महरूमियां खुद ब खुद कम दिखाई देने लगती है, लेकिन जब इंसान नेमतों को भूल जाता है ना तो हर तरफ महरूमी नजर आती है, हाय मेरी तो किस्मत ही टूट गई, हमें तो ऐसे नहीं मिला, ये नहीं हुआ, हमें वो फलां देखो कैसा रह रहा है, हम तो ऐसे रह रहे हैं। फिर इंसान की कभी रोना खत्म ही नहीं होता, क्योंकि नेमतों को वो याद नहीं करता, नेमतों उसके आंखों के आगे नहीं रहती। तो जब आप नेमतों को बहुत ज्यादा याद रखेंगे ना, और उनका चलो बोल के ना लोगों को कहें, कोई शो मारने की बात नहीं है इसमें, अपने अंदर एहसास रखें अल्लाह तूने मुझे ये भी दिया, अपने अंदर ही बात करते रहें, चलो अपने आप को ही बताती रहें, अल्लाह नलका खोलती हूँ पानी आ जाता है, कोई वक्त वो भी थे कि औरतों को दूर दूर कुएं पे जाना पड़ता था पानी लेने के लिए, फिर भी लिमिटेड पानी आता था, ऐसा नहीं कि बेदरेगी खर्च करते रहे, एवरी डे की जॉब ये होती थी उनकी कि वो पानी भी भर के लाए बाकी तमाम कामों के अलावा। अच्छा मैंने वुजू करना है, सर्दियां हैं तो गर्म पानी आ रहा है, गर्मियां हैं तो ठंडा आ रहा है, शावर के नीचे जितनी देर मर्जी खड़ी रहूं कोई परवाह नहीं है कि पानी खत्म हो जाएगा, जितना मर्जी पानी वेस्ट कर रहे हैं, वुजू क्या कर लिया तो तालाब ही बना दिया इर्द गिर्द और परवाह नहीं है। तो हम देखें तो सही कि हम कितनी लग्जरीज में रहने वाले लोग हैं, हर दिन का खाना अलग अलग है, ये नहीं कि एक दिन का खाना खाया तो अगले दिन वही खाना, तो अगले दिन या यही खाएंगे आज भी, हम दुनिया बनाते हैं, और कुछ घरों में तो माशाल्लाह 3 टाइम ही अलग अलग खाने बनते हैं, हम लोग 2 टाइम तो अलग खाते ही हैं, सुबह का अलग होता है हमारा जो नाश्ता हम कहते हैं, और अगर 2 टाइम खाना है तो 2 टाइम भी जिनके बनता है या खाया जाता है वो भी दूसरे टाइम नाश्ता नहीं करते, शाम को नाश्ता नहीं बैठ के कर रहे होते, वो वाली चीजें नहीं खा रहे होते, कुछ और खा रहे होते हैं। तो इनको सोचते नहीं है कि हम भी तो बादशाहों की तरह ही रह रहे हैं, तो क्या इन नेमतों का हम जिक्र करते। बर्तन हमारे देखें, चाय पीने का अलग बर्तन है, पानी पीने का अलग बर्तन है, शोरबा खाने के लिए बर्तन गहरा है, दूसरी कोई और चीज खाने के लिए कोई और प्लेट है, छोटी प्लेटें भी हैं बड़ी प्लेटें भी, देचकियों के अंदर नहीं खा रहे थे, देचकियां अलग हैं, पकाने वाले खाने अलग हैं बर्तन उसके, मेहमानों के लिए बर्तन रखने वाले अलग हैं। तो हमारे बर्तनों की भी क्या बात है कि वहां से वहां तक बर्तनों की यानी अलमारियां कम पड़ जाती हैं, बर्तन इतने। तो जिसको जो जितना भी मिला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह कशाई से ही मिला हुआ है, सोने के कमरे अलग हैं, बैठने के अलग हैं, मेहमानों के अलग हैं, वो उन लोगों के पास तो एक ही कमरा होता था, उसी में सोते थे, उसी में बैठते थे, उसी में उठते थे, ज्यादा से ज्यादा एक सेहन सामने हो जाता था बस। लेकिन फिर भी आज देखें ना, शुक्री ज्यादा है या शुक्रगुजारी है, नेमतों का एहसास ज्यादा या महरूमी के तस्करे ज्यादा है। तो जब जब भी चल फिर रहे होते हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं कुछ, या अपनी डेली लाइफ के जो काम कर रहे होते हैं ना, अपने मतलब अपने घर की सफाई कर रहे हैं, अपनी घर की चीजें सेट कर रहे हैं, अपने अंदर बातें किया कर, अल्लाह तूने मुझे ये भी दिया, अल्लाह तूने मुझे, देखो पहले लोगों के पास कोई ऐसे सोफे होते थे, कोई ऐसे बैठने की चीजें होती थी, कोई ऐसे बिस्तर होते थे, कोई ऐसी चादरें होती थी, एक के बाद एक चादर बदल रहे हैं, एक धुल रही है दूसरी आ रही है, दूसरी धुल रही है ये आ रही है, ये होते थे उनके पास, और अल्लाह तूने मेरी मुझे कितनी नेमतें अता फरमाई, एक टॉयलेट ही आपके घर में होना वो भी कितनी बड़ी आपके लिए नेमत है, निकल के बाहर जाना पड़ता सर्दी हो या गर्मी हो, सुबह के वक्त वो लोग बाहर जाते थे, दूर जाके कहीं बैठते थे, वो ऐसी कोई मुश्किल नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, आराम से घरों में बैठे हुए जब चाहे बाथरूम यूज कर लिया, लेकिन इन चीजों का हमें कोई जरा बराबर भी एहसास नहीं है। एक स्विच के ऊपर, एक रिमोट के ऊपर हमारी कितनी सारी चीजें चल पड़ती हैं, चाहे वो टीवी है, चाहे वो पंखे हैं, चाहे वो गाड़ियां स्टार्ट करनी है, गाड़ियां बाहर खड़ी हुई हैं उनके अंदर बैठे और कहीं चलेगा, कोई भी सवारी है चलो, गाड़ी नहीं किसी के पास, कोई और बाइक है, कोई कुछ है, मगर ये देखिए कि उनके नबी उनको याद दिला रहे हैं नेमतें, हमें कितना जरूरी है कि हम अपनी नेमतों को गिने और उनको याद करें, और उसके बाद सोचिए कि उसके बाद कोई कहीं महरूमी के तस्करे या किसी गिले शिकवे की कोई गुंजाइश भी रह जाती है हमारे पास, इतना पा के भी इंसान ना शुक्रा ही रहे तो फिर कैसा है वो इंसान बताएं। क्रेडिट कार्ड और नोट और पर्स और बरेवे, और जहां जा रहे हैं वो क्रेडिट कार्ड निकाला और यूज कर लिया, आजकल तो ये भी बड़ी आसानी है, आप बताएं वो वाले बादशाह आके देखे वो कहेंगे हम तो अपने खजाने ऊंटों और उसके ऊपर कारून भी अपने खजाने लेके जाता था, ऊंटों पे जाते थे, तो ये तो एक क्रेडिट कार्ड पे ही ले लेते हैं चीजें, इनके पास तो इतनी सी नोटों का ये है तो इससे कर लेते हैं, हमें कितने कितने बड़ी जगह लेनी पड़ती थी जहां पे अपने खजाने रखते थे वो, यानी यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है, अगर उनको पंखे झलने के लिए वो एक कोई खादमा खड़ी होती थी तो आज जो आपके पास पंखे वैसे ही चल रहे हैं, पंखे से भी ज्यादा एसी चल रहे हैं, वो तो बेचारी इतना सा पंखा ही झल सकती थी, तो अगर सोचे ना आप तो हम बहुत बहुत अच्छे हालात में रह रहे हैं हम सब, कोई इस वक्त कुटिया में भी रह रहा है तो वो भी अच्छे हालात में रह रहा है, और हम सब इसमें शामिल हैं कि वजह लकुम मुलूका, तुम्हें बादशाह बना दिया अल्लाह ने, तो ये याद नहीं है, तुम ये सोचते नहीं हो, बादशाहों वाली जिंदगी गुजार के भी गिले शिकवे नहीं खत्म करते, तो जो ना शुक्रा होता है ना, फिर जिसकी आदत ना शुक्री की हो, फिर उसको सारा जहान भी मिल जाए तो उसके अंदर शुक्र गुजारी नहीं आ सकती, जिसमें शुक्र गुजारी हो उसको छोटी सी चीज भी मिल जाती है वो शुक्र करता है, तो शुक्रगुजारी एक रवैया है, अल्लाह के आगे झुक जाना और इस चीज को एडमिट करना कि अल्लाह तेरे मेरे ऊपर बहुत एहसान आते हैं, अल्लाह तेरे मेरे पर बहुत एहसान आते हैं, मैं तो उतना हक नहीं अदा कर सकती, मैं तो उस तरह की इबादत नहीं कर पाती, अल्लाह ताला मैं तो इस तरह की तेरी फरमाबरदारी नहीं कर पाती जैसी मुझे करनी चाहिए, तब देखिए आपके दिल में खुद ये जज्बात पैदा होंगे कि मैं अच्छे से अच्छा करूं, मैं अपने ऐसे रब को नाराज कैसे कर सकती हूँ जिसने मुझे इतना कुछ दिया है, इंसान की नेचर है ये कि वो ऐसे को जिसने उसके ऊपर एहसान किया होता है ना उसके आगे झुकता है, बिछता है उसके आगे, तो जिनको एहसान ही नहीं याद वो क्यों बिछेंगे, वो तो बस एतराज ही करेंगे ना, तो नबी ने उनको बताया कि अल्लाह ने तुम्हें अंबिया भेज के दुनियावी तौर पे भी तुम्हें उरूज दिया, आप देखें आज की इस उम्मत के अंदर अंबिया तो इसके बाद नहीं आ सकते, लेकिन अल्लाह ताला ने वो लोग पैदा किए, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हनबल, बुखारी, मुस्लिम, तिरमजी, नसाई, मतलब इतने बड़े बड़े उलमा अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए कि जिन्होंने दीन के वो खिदमतें कर दी, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को और आपकी बताई हुई अहादीस को कैसे महफूज करा, तो यानी दीनी रहनुमा अल्लाह ताला ने आपके अंदर भेजा, और हर जमाने में कोई ना कोई दीनी रहनुमा भेजे, कभी ऐसे नहीं हुआ कि कोई दीन को सिखाने वाला, समझाने वाला, बताने वाला ही ना हो, काल पड़ जाए, खत्म हो जाए दुनिया से ऐसे लोग, ऐसे नहीं रहा, अल्लाह ने आपके अंदर भी उलमा पैदा की, क्योंकि उलमा अंबिया के वारिस है ना, आप अंबिया तो नहीं आएंगे मगर उलमा होंगे, तो दीनी तौर पे भी इनको एक बहुत बड़ी नेमत दी अंबिया की सूरत में, और दुनियावी तौर पे भी बहुत बड़ी नेमत दी कि तुम्हें बादशाह बना दिया, और ये दोनों नेमतें उम्मत मोहम्मदिया के पास भी हैं, उलमा की सूरत में भी और आज जो हमारी हमारे पास जो जितनी सारी नेमते हैं दुनियावी तौर पे उनकी सूरत में भी, वह आता कुम्मा लम युक्ति अहदम मिन अल आलमीन, और तुमको वो अता किया जो जहान वालों में किसी को नहीं दिया, यानी उनके वक्त में, ये आने वाली कयामत तक के लिए नहीं बात हो रही, जो उनके वक्त में किसी को नहीं ऐसी फजीलत मिली थी कि उनके अंदर अंबिया भी हों, उनके अंदर बादशाह भी हों, या उनके लिए मनोसलवा भी उतरता हो, या उनके लिए और इतनी ज्यादा बेशुमार नेमते हों, चश्मे फूट जाते हों जहां जाते हों, ऐसा नहीं था। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नेमते याद कराएं कि अल्लाह के एहसानात को समझो जानो, और आज देखें हम भी वो लोग हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला ने हमें वो नेमतें अता फरमाई हैं जो पिछले जमाने के लोगों को नहीं थी मुयस्सर। अब आप देखें नेमतें याद करा के, अब क्या है, नेमतें तो ठीक है ले ली, अब नेमतों के बाद क्या करेंगे, लेट जाए आराम करें? नहीं, नेमतें तकाजा करती हैं। अब नेमतों के बाद रिक्वायरमेंट ये कि आप भी उतने ही उठ के आगे काम करो ना। नेमतें पाने के बाद क्या आपको कोई चीज मिली है? उसके बाद जब अल्लाह ताला ने जितनी आपको ज्यादा नेमतें दी हैं उतना ही आपका फर्ज क्या बनता है, आराम करना या उतना ही अल्लाह के रास्ते के अंदर और ज्यादा मेहनत करना? बताएं, मेहनत करना ना। तो वो अब क्या कह रहे हैं अपनी कौम को, या कौमी है मेरी कौम, उदखुलुल अर्दल मुकद्दस अल्लती कतब अल्लाहु लकुम, अब तुम दाखिल हो जाओ अर्ज मुकद्दस में जो अल्लाह ने लिख दिया तुम्हारे लिए। अर्ज मुकद्दस क्या है? अच्छा, अर्ज मुकद्दस के बारे में कई अकवाल हैं। बाज उलमा कहते हैं कि ये फलस्तीन की जमीन है, बाज कहते हैं कि एक बस्ती थी अरीहा की, वो मुराद है, वो भी फलस्तीन में ही थी वैसे, बाज कहते हैं यरूशलम की जमीन। बाहर क्या है, उस वक्त जिसको ये आज फोर कंट्रीज हैं जो ये सारे अर्ज मुकद्दस ही कहलाते थे, जिसमें आज का सीरिया है, फलस्तीन है, जॉर्डन है, लबनान है, ये सब इसके अंदर थे। तो ये जमीन थी जो अर्ज़े मुकद्दस कहलाती थी। अच्छा, अब मैंने जैसे आपको बताया, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया ना लदी बारकना हाउलाहू, अल्लाह ताला ने इसको बाबरकत जमीन बनाया, तो वो जो अर्ज़े मुकद्दस है इसमें दाखिल हो जाओ। अच्छा, यहाँ पे क्यों दाखिल होना था? मैंने जैसे आपको बताया कि फलस्तीन ही इनका वतन था असल में, ये तो मूव हुए थे ना यूसुफ अलैहिस्सलाम की टाइम में, उन्होंने उनको मूव कर दिया था, लेकिन बाज कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से वादा किया था, बाज कहते हैं याकूब अलैहिस्सलाम से वादा किया हुआ था। क्या वादा किया हुआ था? कि तुम्हारा जो औलाद है वो इस वतन की वारिस होगी, यानी जो ये फलस्तीन की सरजमीन है ना इसकी वारिस होगी, यानी ये तुम्हें ही मिलना है, ये तुम्हारी औलाद के, ये अल्लाह ताला ने उनके लिए लिख दिया। तो अब वो उनको कह रहे हैं मूसा अलैहि सलाम, अब ये जब ये कब की बात हो रही है, जिस वक्त वो पार होके आ गए हैं, फिरौन डूब गया हुआ है, अब वो जैसे है ना, अगर आप हिस्ट्री वो या मैप वगैरह देखें तो रेड सी है ना, तो आगे जाके उसकी टू ब्रांचेस हो जाती हैं। जब मूसा अलैहि सलाम मिस्र से निकले थे तो एक तरफ मिस्र है और एक तरफ ये इसकी ये रेड सी आ जाता है, तो इसी को अल्लाह ताला ने फिर फाड़ दिया था और ये यहाँ से निकल गए थे, और वो जो दो ब्रांचेज हैं उनके दरमियान एक जगह है जिसको सहराए सीना कहते हैं। यहाँ पे फिर मूसा अलैहिस्सलाम अब इनको कह रहे हैं कि अब इससे थोड़ा ही आगे है फलस्तीन, कि अब आपने उस मुकद्दस जमीन पे जाना है जो अल्लाह ताला ने आपके लिए लिख दी है, और यानी उसको कॉन्कर करना है, उसको फतह करना, जरा कोई ऐसे तो नहीं प्लेट में रख के दे देगा, यानी जिहाद करना है, असल में बात ये थी। वला तरतद्दू अला अदबारिकुम, और ना तुम फिर जाओ अपनी पीठों पर, फतनक़लिबू ख़ासिरीन, वरना तुम खसारा पाने वाले हो जाओगे, यानी अब लौटना नहीं है, अब ये काम करना है, पीछे नहीं हटना, बुजदली ना दिखाना, हिम्मत ना हारना। अब अल्लाह ताला ने तो वो तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी है, लेकिन तुमने पीठ फेर के नहीं जाना, तुम्हें अब उठना है। यानी देखिए ना, अल्लाह ताला ने मिसाल के तौर पे, जैसे आपको एक मिसाल देती हूँ, अल्लाह ताला ने किसी के लिए रिस्क लिख दिया कि इतना इसके लिए रिस्क है, अल्लाह ने लिख दिया वह, अब उसने उठ के कोशिश करनी है उसके लिए। ऐसे तो नहीं उसके घर के अंदर ही रिस्क आके टपकने शुरू हो जाए। तो अल्लाह ताला ने वो लिख दिया यानी मिलेगी, तो उत्फता तुम्हारी ही होनी है, ये डिक्लेयर्ड है, अल्लाह की तरफ से फैसला है, लेकिन अब खुद भी तो उठ के करेंगे कुछ। तो अल्लाह ताला तो वैसे भी वो उनको खत्म करके वहां पे जो कौम रहती थी और इनको वैसे ही दाखिल कर सकता था, लेकिन आप नोट करिएगा हर जगह पे ये है कि चाहे अल्लाह ने फैसला कर दिया है लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की तरफ से ये डिमांड होती कि इंसान जाए, मेहनत करे, उस रास्ते को इख्तियार करे, फिर वो चीज मिलेगी उसको। मसलन हजरत मरियम है, जिस वक्त उनको पेन्स हो रही थी तो उनको क्या कहा गया कि आप इस टहनी को हिलाओ तो खजूरें गिरेंगी और आप उनको खाओ, ये नहीं कहा गया कि खजूरें खुद ही टपक जाएं, ठीक है ना। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगें की, ऐसे नहीं किया गया कि आप लोग बैठे रहे, आप मदीना में आ गए, आपने माइग्रेट तो कर लिया, इतनी बड़ी हिजरत की कुर्बानी दी है, अपना वतन छोड़ा है, तो आप कोई मसला नहीं, फरिश्ते ही आके लड़ते रहेंगे काफरों से, आप लोग आराम करें, ऐसा नहीं होता कहीं पे भी। इस बाब इख्तियार करने जरूरी है, और अल्लाह ताला ने कोशिश और मेहनत एफर्ट करने को लिखा है इंसान के लिए कि वो इंसान एफर्ट करता है तो फिर उसको अल्लाह ताला वो चीज अता फरमाता है। अब यहाँ पे इनको भी कहा गया कि जाना तो आपको ही पड़ेगा, ऐसे तो नहीं होगा कि फरिश्ते वहां पे जाके लड़ लें और फरिश्ते ही जाके आपके लिए दरवाजे खोल के शहर के खड़े हो जाए और आप आ जाए अंदर, ऐसे नहीं है। अल्लाह चाहे तो ऐसे कर सकता है, मगर ये अल्लाह ताला ने असबाब की दुनिया बनाई है, तो इसलिए इंसान को कहा गया है कि वो मेहनत करे, कोशिश करे। अच्छा, अब उन्होंने बता भी दिया कि तुमने पलटना नहीं अपनी पीठों के, मैंने पीठ पीछे यानी मैदान जंग से भागना नहीं है, वरना तुम खसारा पाने वाले हो। कहाँ पे खसारा होगा, दुनिया में भी खसारा होगा जाहिर है, फिर वो जगह तुम्हें नहीं मिल सकती और आखिरत में भी तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि ये भी एक गुनाह है मैदान जंग से भागना, और अल्लाह का हुक्म है कि जाओ इस बस्ती के अंदर, दाखिल हो इस बस्ती में, क्योंकि अभी अपनी तरफ से तो नहीं कहते थे ना। लेकिन ना इनका ये प्रॉब्लम था कि ये अब इतने अरसे गुलामी में रहे थे, गुलामी में रहने के बाद अब यहाँ पे मनोसलवा मिल रहा है, जहां जाते हैं चश्मे फूट जाते हैं, बादलों का साया है, आराम तलबी इनके अंदर आ गई थी। अब ये लोग मेहनत करना, कुर्बानी देना अल्लाह के दीन के लिए और इसके लिए कुछ एफर्ट करना, ये अब जो जो कौमें आराम तलबी की आदत जिनको पड़ जाती है ना कि बस आराम करें हम बैठे, फिर वो अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानियां देने के काबिल नहीं रहते। जब पका पकाया इनको भी मिलने लगा तो कौन जान जोखों में डाल के जिहाद करे, तो ये आगे से क्या कहने लगे, कालू या मूसा, कहने लगे ऐ मूसा, उन्होंने ये नहीं कहा या रसूलुल्लाह, सहाबा कराम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे नहीं कहते थे या मोहम्मद, लेकिन ये देखो कैसे अपने नबी को पुकारते, इनके पुकारने में ही पता चल जाता है ना, जो जो बेअदब होता है ना वो तो नामुराद ही होता है, बा अदब बा मुराद होता है। अदब इंसान के खुद के लिए फायदा मंद होता है, ये नहीं कि वो कहे कि मैं क्यों इसकी इज्जत करूं, ये कोई बड़ी चीज है, नहीं मैं तो खुद ही बड़ी चीज हूं, तो वो इंसान सोचे कि मैं इसको कोई मतलब किसी अच्छे नाम से पुकारूं या अदब करूं इसका तो इससे तो पता नहीं मैं नीचा हो जाऊंगा, नहीं, इसमें इंसान बल्कि जो बड़े कहते हैं ना बा अदब बा मुराद, तो वाकई ऐसा देखा गया कि जिनके अंदर अदब होता है ना वही कुछ को पा सकते हैं, जो बदतमीजी करते हैं, दूसरों के ऊपर चढ़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं। कभी कभी मुझे रिपोर्ट्स आती हैं ऐसी कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अपनी ग्रुप इंचार्ज के साथ बदतमीजियां करते हैं, वो सोचते होंगे कि ये क्या चीज है, इनसे ज्यादा तो मुझे आता है, तो मैं बदतमीजी करूं तो क्या कर लेंगे ये मेरा, तो आप खुद ही अपना लूज करेंगे, उसको नहीं कुछ फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आपके अंदर अदब होगा ना तो अल्लाह ताला आपके लिए इल्म के दरवाजे खोलेगा, आपको वो चीजें मिलेंगी इस अदब की वजह से। पहले जमाने में जब इल्म सिखाया जाता था तो पहले अदब सिखाया जाता था फिर आगे इल्म सिखाया जाता था, और आप अदब की कहानियां सुने तो इंसान हैरान रह जाता है, आज तो लगता है कि वो टीचर जो है वो स्टूडेंट है और ये स्टूडेंट टीचर है, क्योंकि वो उनको बताते हैं कि आपने ये करना है। तो वो भी कहने लगे ए मूसा, यानी जैसे कोई मूसा अलैहिस्सलाम कोई उनके साथ के कोई साथी दोस्त है, जबकि वो अल्लाह के पैगंबर हैं। इन्ना फीहा कौमन जब्बारीन, बेशक इसमें तो एक ओम है जो बहुत ही सख्त है, बहुत ताकतवर है, बहुत जोरावर है। बुजदिली भी आ गई थी ना उनके अंदर। आपको लगता नहीं कि हमें भी आराम तलबी की आदत पड़ गई है? हम कोई एफर्ट नहीं करना चाहते, कितना भी अल्लाह के वादों का पता चल जाए। अल्लाह ताला कहता है कुरान पाक में, तुम अल्लाह के साथ ये सौदा कर लो, तुम अल्लाह के साथ ये ट्रेड कर लो, ये तिजारत करने को ये बड़ी नफामंद तिजारत है। हम टॉसे मौसी नहीं होते हैं, इसमें भी कुछ करना पड़ेगा। वहीं के वहीं बैठे हुए और बैठे ही हुए हैं, कितना भी सुना दिया जाए, बता दिया जाए, कुछ नहीं करना, क्योंकि करने में कुछ जान खपानी पड़ती है ना, कुछ मेहनत लगानी पड़ेगी, कोई नींद की कभी कुर्बानी देनी पड़ेगी, कभी कहीं टीवी देखने की कुर्बानी देनी पड़ेगी, कभी कोई इंटरनेट सोशल मीडिया से की कुर्बानी देनी पड़ेगी, कुछ सैर सपाटों की और शॉपिंग की कुर्बानी देनी पड़ेगी, दावतों की कुर्बानी देनी, वो नहीं हमसे होता। फिर तो जो कोई ऐसे ऐसे मिल जाए कि पका पकाया सारा कुछ बस मुंह में डाल लूं, तो वो भी मुंह में कोई डाल दे तो फिर ठीक है, लेकिन एफर्ट नहीं हमने कुछ करनी। वो उनके तो हाल बुरे ही हो गए हुए थे। अब वो कहते हैं अब हमसे नहीं जाया जाता, वहां पे तो इतने सख्त लोग हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने जायंट लोग हैं, हम उनका कहाँ से मुकाबला कर सकते हैं। और आप देखेंगे बाज तफसीरों में लिखा हुआ जी वो इतने लंबे थे, पता नहीं कितने हजारों फुट थे, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम अलैहि सलाम का कद 60 हाथ था, 60 मतलब फुट कह लें। और इसके उनके बाद जो लोग हैं उनके कद घटते चले गए, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो जाहिर है 60 से ऊपर तो नहीं हो सकते, होंगे ताकतवर होंगे जरूर होंगे, मगर ये इतनी कहानियां बना लेना कि वो पता नहीं कितने बड़े देव थे या क्या थे, ऐसी नहीं बात है। तो उन्होंने कहा वो तो कौमन जब्बारी है, वो इन्ना लन्नत हुलाहा या फ्रूजू में, हम तो नहीं जा सकते जब तक वो नहीं वहां से निकले, क्योंकि हमें तो हिम्मत नहीं है। अब वो कोई खुद तो नहीं निकल के जाके खड़े हो जाएंगे ना कि आ जाओ आप और ले लो ये जगह। यखरुजु मिन्हा फइन्ना दाखिलून, ठीक है अगर वो निकल गए तो फिर हम चले जाएंगे। वही वाली बात है ना, आराम तलबी इतनी है कि चले तो जाएंगे, लेकिन पहले सारे हमारे लिए चीजें ऐसी हो जाए कि बस कोई मुंह में ही डाल दे उठा के खाना, तो फिर हम चबा लेंगे, चलो तो हम चले जाएंगे, लेकिन पहले वो निकले वहां से, खुद नहीं कुर्बानी देनी, खुद नहीं कुछ करना। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को देखें तो कितनी बड़ी उन्होंने कुर्बानियां दी, कैसे हिजरतें की, कभी अपने घर छोड़े, अपने कईयों ने खानदान पूरी फैमिलीज मक्का में ही रह गई थी, अकेले चले गए थे। हातिम बिन अबी बलता की नहीं बात आती कि मक्का में उनकी फैमिली थी, उनको ये डर था कि कुरैश को नुकसान ना पहुंचाए, तो ऐसी अपनी फैमिलीज तक की कुर्बानी दी, अपने माल की कुर्बानी दी, अपनी जगह की कुर्बानी दी, खाली हाथों चले गए। और इनके लिए देखें कि क्या इनकी हालत हो चुकी थी। और ऐसे ही नहीं फिर दीन फैलाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये मुखलिस साथी थे जो कुर्बानियां देने के आदी थे, उनकी जिंदगी में आराम तलबियां नहीं थी, तभी फिर ये दीन कहां से कहां पहुंचा। और ये आज हम उनकी काविशें, उनकी मेहनतों का ही समर खा रहे हैं, ये जितने मुल्कों में फैला हुआ या जितने आपको मुस्लिम कंट्रीज नजर आ रहे हैं, ये उस जमाने की मेहनतों के ही फल हैं। अब तो नहीं है कोई ऐसा, आपको कितने मुल्कों को आप देखते हैं कि फलां मुल्क मुसलमान हो गया, कोई नहीं है ना, क्योंकि हमारी अमन में आराम आ गया। अब तो हम अपने आप को नहीं संभाल पाते, किसी और को क्या बताएंगे। तो वो मुखलिस लोग थे तो उन्होंने काम किए, वो आराम करने वाले नहीं थे। और इनकी हालत जब पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है ये तो हमारी कहानी है। आज तक फिर ये हाल हो गया उम्मत मुस्लिम का जो उस वक्त बनी इसराइल का था, जबकि हमारी ये हिस्ट्री नहीं है, हमारी हिस्ट्री बहुत रिच है। मगर आज हम उस नहज पे पहुंच गए कि जिनको कंडेम किया जा रहा है कुराने पाक में, वो आज हमारी हालतें, ऐसे लगता है हम आईना देख रहे हैं, हम खुद अपने आप को देख रहे हैं इसके अंदर। अच्छा अब क्या हुआ, काला रजुलानी मिन अल्लदीना यखाफून अन अमल्लाहु अलैहिमा, कहा दो आदमियों ने, अब वो 12 नकीब थे ना इनमें से, वो 12 को मूसा अलैहिस्सलाम ने भेजा, जाओ अपने लोगों को जाके कहो कि वो अल्लाह के रास्ते में निकलें, जिहाद के लिए निकलें, अल्लाह का हुक्म आया। उन्होंने आगे से ये जवाब दे दिया, 12 जो आदमी थे वो गए और उन्होंने जाके उनको देखा तो वहां पे अमालिका कौम थी, ये कौम जो जब्बारीन थी ना अमालिका थी, तो वो जाहिर है ताकतवर थे, मजबूत थे, और उन्होंने आगे कहा नहीं हमारे तो बस की बात नहीं है, ये नहीं हो सकता। अब इनमें से दो जो लोग थे जिनमें एक यूशा बिन नून, यूशा बिन नून आपको पता है बाद में नबी भी बने मूसा अलैहि सलाम के बाद, और यही है वो जिनका सूरह कहफ के अंदर आता है मूसा अलैहि सलाम के साथ सफर पे निकले थे, एक वो और एक कालिब, ये दो लोगों का आता है कि ये दो आदमी थे इतने लोगों में से वो उन लोगों को समझाने के लिए खड़े होकर उन्होंने कहा ये कौन थे, मिनल्लदीन यखाफूना अन अमल्लाहु अलैहिम। इसको दो तरह से समझ सकते हैं, एक अगर हम कहें मिनल्लदीन यखाफूना उन लोगों में से जो डर रहे थे, वो जो सारे लोग डर रहे थे उनमें से ये थे, अन अमल्लाहु अलैहिम अल्लाह ने इनके ऊपर इनाम किया हुआ था, ये इनाम याफ्ता थे। इनाम याफ्ता कैसे थे, उनको क्या इनाम मिला हुआ था, उनको कोई तमगे मिले हुए थे, कोई उनको ज्यादा कोई मनोसलवा ज्यादा मिलता था, क्या था इनाम इनके पास, इनके पास ये इनाम था कि ये अल्लाह से डरने वाले थे, इनके अंदर खौफे खुदा था, इनके अंदर अल्लाह की इताअत का जज्बा था, इनके अंदर अल्लाह की नबी की बात को मानने पे उनकी बात को पे लब्बैक कहने का जज्बा था। ठीक है, तो ये अनअम अल्लाह ने इसको इनाम कहा है कि जिसके अंदर खौफ खुदा हो और अल्लाह की इताअत का जज्बा हो और वो अल्लाह की बात के ऊपर लब्बाई कहने के लिए खड़ा हो जाए, ये अल्लाह का इनाम है, इनके ऊपर अल्लाह का इनाम हुआ था। दूसरा इसका माना ये, काला रजुलानी मिनल्लदीना यखाफुना, कहा उन लोग, कहा दो आदमियों ने, मिनल्लदीना उन लोगों में से, यखाफुना जो वो दो आदमी जो डरते थे, यानी एक में हम लोगों की तरफ ले जाएं कि वो जो डरपोक लोग थे उनमें से ये इनाम याफ्ता थे, दिया ये उन लोगों में से ये थे जो डरने वाले थे अल्लाह से, यानी अल्लाह से डरने वाले थे और ये अल्लाह का इनाम था इनके ऊपर। समझ आ गई दोनों बातें। तो उन्होंने क्या कहा, उदखुलू अलैहिमुल बाब, दाखिल हो जाओ उन पर दरवाजे से। कौम, उन्होंने कौम को कहा, कौम क्या कर रही हो तुम, क्यों बुजदिली दिखा रहे हो, क्यों कमजोरी दिखा रहे हो, उठो दाखिल हो जाओ, फाइजा दखल तुम हो फइन्नकुम ग़ालिबून, बस तुम सिर्फ दरवाजे में दाखिल हो जाओ तुम ही गालिब होगे, तुम कुछ ना करना, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम बस दरवाजे तक चले जाओ वहां पे दाखिल हो जाओ, अल्लाह तुम्हें फतह दे देगा, तुमने बस इतना करना, हो सकता है लड़ाई की भी नौबत ना आए, अल्लाह का वादा है हो सकता है वो भाग ही जाए, तो तुम बस दरवाजे में तो दाखिल हो जाओ, अल्लाह के वादे पे भरोसा करो, वाला अल्लाह ही फतवक्कलू, अल्लाह के वादे पे भरोसा करो, अल्लाह ने तुमसे वादा किया हुआ है कि वो तुम्हें वो जमीन दे देगा, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम वाकई तुम्हारे अंदर कोई ईमान रह गया तो तुम भरोसा करो, अल्लाह ने तुमसे वादा किया हुआ है, उठो और चलो। अब आप सोचें ये जो बनी इसराइल थे ना, 6 लाख थे जिस वक्त के वहां से निकले थे मिस्र से, चलो सारे ना होंगे, औरतें होंगी बीच में, बच्चे होंगे, सारे ना सही, मगर कोई 2-3 लाख तो होंगे जो मर्द होंगे जो लड़ सकते होंगे, कोई चलो 1-2 लाख ही हो, मगर इंतहा देखें उस कौम की कि उनके अंदर इंसानों का खौफ कितना था, बुजदिली कितनी थी, कम हिम्मती कितनी थी, आराम तलबी कितनी थी कि इतने लाखों में सिर्फ दो आदमी थे जो कहने के लिए खड़े हो गए कि लोगों ऐसे ना करो। इससे हमें ये बहुत बड़ी बात पता चलती है कि कभी लोगों की अक्सरियत को ना देखें, सारे ऐसे कह रहे हैं पता नहीं यही ठीक होंगे, हमें क्या पता, ना किसी की कसरत ना कि किसी की किल्लत, ये हक का मैयार नहीं होती, यानी हक को आप इस बेस पे नहीं पहचानेंगे, ये आपका क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि इनके साथ कितने लोग हैं, ये कोई क्राइटेरिया नहीं, हो सकता है किसी के साथ बहुत ज्यादा लोग हो सकता है किसी के साथ कोई भी ना हो, हम पता है कयामत के दिन कई अंबिया ऐसे भी आएंगे जिनके साथ एक उम्मती होगा, किसी के साथ दो होंगे, और आप हैरान होंगे ये सुन के कि कोई नबी ऐसे भी आएंगे जिनके साथ कोई भी नहीं होगा, पूरी की पूरी कौम ने ही झुठला दिया, तो क्या वो ठीक होगा, नहीं, नबी की बात हक थी, अगर ना हक को ना मानने वाले पूरी की पूरी चाहे कौम हो फिर भी तब भी ये एक मयार नहीं है कि जिस पे हम कहें कि वहां पर शायद वही सही हूं, क्योंकि बास लोग ना क्वेश्चन कैसे लेकर आते, अच्छा अगर ये बात इतनी सही होती तो भला इनको क्यों नहीं समझ आई फिर, और यही बात हम ना अहले किताब के लिए, बाज लोग मुझे कहते हैं वो हिंदू हैं वो लेकिन इतने पढ़े लिखे हैं वो इतने, तो फिर ये बात उनको क्यों नहीं समझ आती, वो फलां हैं वो ज्यूज हैं वो यो इतने वो हैं उनको फिर क्यों नहीं समझ आई ये बात, आखिर वो भी तो हैं, या फिर अगर कोई हक की बात तौहीद की बात बताई जाए कोई गुमराह कौन फिरके हैं जो बिदतें कर रहे हैं? नहीं, वो तो इतने आलिम हैं, उनके तो इतने फॉलोअर्स हैं, फिर उनको क्यों नहीं फिर ये बात समझे? ओ भाई, उनके कितने भी फॉलोअर हो, कितने भी फैन हो, कितने भी बड़े वो पीर साहब हो, कितने भी बड़े उनके मुरीद हो, कितने ही ज्यादा हो, हक का ये मयार नहीं होता कि उसके कितने फैन हैं, उसकी कितनी फॉलोइंग है फेसबुक पे। हमने की कैसी मयार बना ली है? हक का मयार अल्लाह और उसका रसूल है बस। अब वो बाबे हैं, वो कोई पीरे हैं, वो कोई पीरनिया हैं, वो कोई फला हैं, हमें इससे क्या? उसके साथ चाहे पूरी की पूरी कौम लग जाए। हमने हक ये नहीं देख के सोचना कि कौन कौन किसके साथ है, वो कितने पढ़े लिखे हैं जो उनके साथ है। वहां मुझे बताएं, अहले किताब यहाँ पे भी कहा गया, या अहले या अल किताब, ठीक है, अहले किताब कौन लोग थे बताएं मुझे, जिनको किताब कह के ही पुकारा गया, किताब वालों, या अहले किताब का मतलब क्या है? किताब वालों, वो उस वक्त के पढ़े लिखे लोग होते थे, इल्म वाले लोग होते थे, ठीक है। उनकी इतनी धाक थी उनके इल्म की कि ये कुरैश जो है उनसे जाकर पूछते थे कि ये इल्म वाले हैं। लेकिन उनकी हालत ये हो गई भी थी जो आप आगे आज देख रहे हैं, ये यहाँ पे देख रहे हैं। अगर आज भी आप देख लें, ये इनको कहा गया ना, या किताब कद जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम, तुम्हारे पास रसूल आया है जो तुम्हारे पास बयान करता है बातें, तो आप सोचें ये लोग खुद भी रुके और इनकी वजह से इनके पीछे और बहुत सारे लोग रुके। क्यों? इसलिए कि जब पढ़े लिखे और इल्म वाले लोग और किताब अंडरस्टैंडिंग वाले लोग जब वो रुकते हैं, तो उनके पीछे जो सादा लोग आवाम होती है, जो हमारे जैसे, जो कहने लगते हैं हाँ वो अगर बात सही होती तो उनको ना समझ आ जाती, देखो वो भी तो इतने बड़े हैं, उनको ना पता चल जाता। अक्सर आवाम के यही काम होते हैं, उनके पास यही, आज भी यही एक्सक्यूजेज हैं, उस वक्त भी थे। तो वो इनकी वजह से वो भी दीन से, दीन को मानने से रह गए, ईमान नहीं लाए, सिर्फ इसलिए कि ये नहीं लाते थे। और इवन आज भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, वो दीन के ऊपर उल्टी सीधी बातें, वो पता नहीं क्या क्या अपनी बातें कुछ निकालते रहते हैं, और खुद भी अपना बेड़ा गर्क करते हैं और दूसरों का भी करते हैं, इसलिए कि वो जो दूसरे सादा लोग आवाम है वो क्या कहने लगते हैं, हाँ ये तो इतने PhD हैं, ये तो इतने बड़े वो हैं, उन्होंने तो इतनी रिलीजियस बुक्स पढ़ी हुई है, उनकी तो इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, वो तो फलां बड़े प्रोफेसर हैं, फिर वो उनको क्यों नहीं समझ आई? तो ये हमारी बेवकूफी है जब हम ये कहते हैं, क्योंकि किताबें पढ़ लेने से कोई हिदायत नहीं पा सकता। इवन कुरान पढ़ के कई लोग गुमराह हो जाते हैं, अनलेस कोई कुरान इस वजह से पढ़ रहा हो तब उसको हिदायत मिलती है, जो आज हमने बात पढ़ी है कि अल्लाह की रजा लेने के लिए बस, वरना कुरान से भी लोग गुमराह होते हैं। अल्लाह अकबर। तो इसको मयार बनाना छोड़ दें हम कि कितने लोग किसके साथ हैं। अब यहाँ पे देख लें, ये दो लोग खड़े हुए जो अल्लाह से डरने वाले थे, और अल्लाह ताला ने फिर इन्हीं में नबी भी चुने कि यूशा बिन नून, अल्लाह ताला ने उनको नबुवत अता फरमाई, उनको क़यादत अता फरमाई, क्योंकि वो हक पे रहे थे कि अब सारी कौम एक तरफ है, वो अगर उल्टा कोई फैसला करें तो ये उनके कहने में नहीं आ गए। और क्या पता चला, खौफ खुदा भी अल्लाह का इनाम होता है, और खौफ खुदा किसको मिलता है? कुरान कहता है, कुरान बताता है, इल्म वालों में खशियत होती है, जिसके पास इल्म होता है ना उसमें खुदा खौफी होती है। और वाकई ये बात इतनी ट्रू है, जब इल्म नहीं होता ना खुदा खौफी भी नहीं होती। क्यों हम कुरान पढ़ते जाते हैं तो हमारी फिक्र क्यों बढ़ती है? वो है जो फिक्र आखरत, खौफ खुदा क्यों बढ़ जाता है? इल्म की बदौलत, जितना इंसान को पता चलता है, और जब नहीं पता होता तो फिर देखें कैसे लाऊबाली जिंदगियां हमने भी गुजारी हैं। अब एक जगह मैं दर्स देने के लिए गई, इससे आपको थोड़ी एग्जाम्पल देती हूँ। तो वहां पे मैंने स्टार्ट में पूछा कि आप लोगों में से कौन लोग हैं जो अपनी जिंदगी से मुतमईन है कि भाई मैंने जितना करना था कर लिया, और मैं आई एम गुड, राइट, मैं आई एम गुड, मुझे कोई मसला नहीं, कोई फिक्र नहीं है, कोई ऐसे मसला नहीं है, मैं मतलब सब अच्छा कर लिया, मैंने अपने लिए काफी कर लिया। आप सोचें जितने बेचारे कुरान के स्टूडेंट थे वहां पे, उन्होंने तो कहा कि नहीं, हम तो नहीं मुतमईन है। एक बंदी जिसका कुरान से कोई ताल्लुक नहीं, उसको कोई दीन का समझ नहीं, कोई फहम नहीं, उसने कहा मैं तो मुतमईन हूं। मैंने तो सब अपना बिल्कुल सही किया हुआ, आज तक मैं क्यों ना मुतमईन, मैंने क्या ऐसा गलत किया। तो फिर मुझे ये हुआ कि वाकई अल्लाह ताला की बात कितनी सच्ची है कि खशियत इलाही उनको मिलती है जिसके पास इल्म होता है। इल्म नहीं है तो इंसान, आज देखें दुनिया कितनी, हम कहते हैं ना ये बड़े मजे कर रहे हैं, हम डर डर के रहते हैं, हम क्यों इतनी फिक्रें कर रहे हैं। जैसे जैसे इल्म आता जाएगा उतनी खशियत उतनी फिक्र बढ़ती जाती है। क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते थे, क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम फिक्रें किया करते थे, उनके पास इल्म ज्यादा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई नहीं अल्लाह ताला को जानने वाला। तो लेकिन कितना आप अल्लाह से डरने वाले थे। तो ये जो बेफिक्री है ना, इसको कोई इनाम ना समझे कि मुझे तो कोई फिक्र ही नहीं आखरत की, तो ये तो मैं बड़ी आई एम गुड नाउ क्योंकि मैं जो कोई आखरत की फिक्र नहीं है और मुझे तो इसकी कोई परेशानी रहती, तुम तो पागल हो, तुम लोगों को तो परेशानी रहती आखरत की। नहीं, ये परेशानी होना ही इस चीज की निशानी है कि किसी के पास वाकई इल्म है तो वो फिक्र भी कर रहा है। आप देख रहे हैं छोटे बच्चे, वो कभी स्विच में हाथ उंगलियां डालने शुरू कर देते हैं, कभी कोई और कोई डेंजरस काम शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके पास इल्म नहीं है। उनको अगर आप देखेंगे तो कोयला भी पकड़ लेंगे जाके। लेकिन जिसके पास इल्म है कि ये डेंजरस चीज है, वो फिर उससे कितना बचता है। तो ये फर्क इल्म का होता है। तो कालू, उन्होंने कहा या मूसा, ए मूसा, इन्ना लन नदखुलहा अबदन, हम तो कभी भी नहीं दाखिल होंगे उसके अंदर, हरगिज नहीं हम दाखिल होंगे कभी भी। मा दामू फीहा, यानी उन्होंने तो अपना फैसला मतलब दे दिया, इतनी उनकी समझाने के बावजूद ऐसी कौम थी कि उन्होंने कहा कि जब तक वो रहे इसमें हमने नहीं जाना, यानी जब तक यानी दुनिया है हम नहीं जाएंगे, हम तो कभी नहीं दाखिल होंगे। अल्लाह अकबर। फदहब अंता और अब्बू का फकातिला इन्ना हा हुना काइदू, तुम जाओ मूसा और तेरा रब जाके लड़ ले, हम तो यहाँ बैठे हैं। जैसे हम नहीं कहते उदी अल्लाह गैब से मदद कर दे, गैब से फरिश्ते भेजे, यानी फरिश्ते ही आके लड़ लें, या गैब से ही फरिश्ते ही आके कोई काम कर दें और अल्लाह की गैब से ही मदद आ जाए या दीन फैल जाए इस दुनिया के अंदर, सारे लोग अल्लाह तू अपनी गैबी मदद भेज, सब लोग हिदायत पे आ जाएं, बस वो फरिश्ते आके काम कुम करते रहे, वो अपनी तबलीग करके चले जाया करें, हमने नहीं कुछ करना। वो तो हाथ हिलाओ कुछ, अल्लाह से फिर मदद मांगो, बस चाहते हैं गैब से मदद आ जाए बस हमारी, फरिश्ते ही मदद करें और वो ही कोई काम कर दें आके। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे उनकी कम हिम्मती की, उनकी जो बुजदिली की बात बताई कि और उनकी जो बेअदबी की बात थी वो यहाँ पे बयान फरमाई कि कैसे उन्होंने कहा जाओ तू और तेरा रब जाके लड़। और यही वो बात है, ये तारीख में कहाँ आती है, आपने पढ़ी है कहीं सीरा में? कहीं सीरत में आपके सामने ये बात आई है कि किस वक्त ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा ने करी थी, सहाबा ने आपसे क्या फरमाया था जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम को पता चला कि वो काफला तो निकल गया है और अब कुरैश आ रहे हैं लड़ने के लिए, तो आपने मुसलमानों से मशवरा किया। उस पे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे हैं और अच्छी बातें की, आपको सपोर्ट की बातें की, हजरत उमर ने भी सपोर्ट की बातें की, हजरत मिकदाद उठे और अर्ज किया या रसूल अल्लाह वल्लाही हम वो बात नहीं कहेंगे जो बनी इसराइल ने मूसा अलैहि सलाम से कही थी, फ़ذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون। तो उन्होंने यही बात फरमाई थी हजरत मिकदाद ने कि हम आपको या रसूल हम नहीं आपको ये कहेंगे कि आप और आपका रब जाके लड़ लें, हमने नहीं लड़ना, बल्कि हम तो आपके दाएं से भी लड़ेंगे, बाएं से भी लड़ेंगे, आगे से भी लड़ेंगे, पीछे से भी लड़ेंगे। इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश हुए, आपका चेहरा मुबारक रोशन हो गया। और इसी पे हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि मिकदाद की बात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट और रौनक आई जिससे मेरा जी चाहा कि मैं अपनी सारी जिंदगी की नेकियां मिकदाद को दे दूं और एक ऐसी बात कर लूं जिससे अल्लाह के रसूल के चेहरे पे रौनक आ जाए। किसी कैसी उनकी वो होती थी ना, सुभान अल्लाह, उनके शौक कैसे होते थे। काश मैं ऐसी कोई बात करता, मेरी बात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे खुश हो जाए। वही वो मौका था जब फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चाहते थे ना कि अंसार में से कोई बोले, तो तब हजरत साद बिन मुआज ने फरमाया था, या रसूलल्लाह आप शायद हमारी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा, अगर आप हमें समुंदर पे भी ले चलें और उसमें कूदने को कहें कि समुंदर में कूद जाओ, तो हमारा एक आदमी भी पीछे नहीं रहेगा। ये थे उनके साथी। और ये देखे ना मूसा अलैहि सलाम के साथियों का हाल क्या था, अल्लाह अकबर। अब देखिए कि ऐसी बात कर देना कि अब दुनिया की इधर की उधर हो जाए, हमने तो जाना ही नहीं है, तो सोचें कि उन नबी का क्या हाल हुआ होगा, कितनी सताने वाली कौम थी। कि यानी इतने अल्लाह ताला के एहसान, अल्लाह ताला ने तुम्हें कितनी नेमतें दी, और अब जब कोई काम करने का वक्त आया, कोई कुर्बानी देने का वक्त आया, तुम कह रहे हो हमसे नहीं होता। ठीक है, वही वाली बात है ना, हम भी इसी तरह नहीं बैठ जाते, हमसे नहीं होता, हम नहीं कर सकते, हम बिजी बहुत हैं, अब जो मर्जी हो जाए हमसे तो नहीं होता। तो देखें जो कौमें फिर ऐसी जवाल याफ्ता होती हैं, फिर उनका अंजाम भी तो ऐसा ही होता है। फिर आगे देख लें आप इनका अंजाम क्या हुआ। अब हम पूछते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब ख्वाब देखने से चीजें नहीं मिल जाती, एफर्ट करने से होता है। वो अच्छा हम चले जाएंगे, वो जब हम चले जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे, फई यखरुजु मिनहा फइन्ना दाखिलुन, ड्रीम वर्ल्ड में रहना। ये सुहाने ख्वाब आप जितने मर्जी देख लें, उससे तरक्कियां नहीं मिल जाती, उससे काम बन नहीं जाते, जब तक आप उठ के कुछ एफर्ट ना करें, हिम्मत करने की, उठने की, अल्लाह के दीन के लिए कोई कुर्बानी देने की, अगर यही चीज अंदर से खत्म हो जाए तो क्या कामयाबियां मिलेंगी। उनको कहा ना मूसा अलैहि सलाम ने कि तुम अगर ना उठे ना और तुमने पीठ फेर ली, तुम खसारा पाने वालों में से हो जाओगे, और उन्होंने खसारा पाया। फिर अच्छा अब क्या हुआ, अब कौला मूसा अलैहि सलाम कहने लगे, देखें कितने मजबूर हो गए होंगे। एक इस बात से ही आपको पता चलेगा मूसा अलैहि सलाम की बेबसी यहां पर, कि उनका कोई जोर नहीं चल रहा था इनके ऊपर। फरमाया रब्बी इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी वाकई, मैं अल्लाह मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है, मैं तो अपनी जान का मालिक हूं, या अपने भाई का, कि मैं इसको कुछ कह सकता हूँ और या अपने आप से कुछ करा सकता हूँ। अल्लाह मेरे मेरे पास कोई इख्तियार ही नहीं है, कोई पावर नहीं है मेरे पास। कभी ऐसा होता है ना, देखिए हसरत अफसोस की कैफियत उनकी क्या होगी, कि कभी एक यानी आप इससे करें कि एक जो पैगंबर होता है ना, वो अपनी कौम का बाप होता है, रूहानी बाप होता है। हम बहुत सारे वालदैन को देखते हैं कि उनके बच्चे भी उनको इस कदर सताते हैं, कुछ भी कह लें, ऐसे ही है जैसे दीवार में सार मारना, दीवार में टकरे मारना, भैंस के आगे बीन बजाना, यानी उनको कुछ असर नहीं होता। जैसे इनको नहीं ना उन्होंने समझाया, मूसा अलैहि सलाम समझा रहे हैं, बता रहे हैं, देखो अगर ना गए ना तो फिर तुम्हें खसारा होगा, देखो चले जाओ तुम्हारे लिए लिखी भी अल्लाह ने कोई, वो लोग कह रहे हैं तुम दाखिल तो हो जाओ, इतने ही इनको हौसला अफजाई करा रहे हैं, फिर भी कोई असर नहीं है। वो साफ जवाब दे दिया उन्होंने। तो इसी तरह के कई बच्चे भी होते हैं जो वालदेन को ऐसे सताते हैं, और फिर वालदेन भी ये यही कह सकते हैं फिर कि अल्लाह मेरे मेरा पास कोई इख्तियार नहीं है, अल्लाह अपनी जान का इख्तियार है बस, और तो किसी का नहीं इख्तियार। बेबसी की ये एक मतलब अलामत है कि इंसान ये कहे कि मैं अल्लाह कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, यानी ये बेसिकली वो कह रहे हैं कि अल्लाह मेरे हाथ में कुछ नहीं। जो लोग इस तरह के काम करते हैं फिर देखिएगा उनके साथ क्या होता है, फफरुक बैनना व बैनल कौमिल फासिकीन, अल्लाह बस जुदाई डाल दे हमारे दरमियान और इन फासिक कौम के दरमियान। यानी ये इतने नाफरमान है, इतने मोजे देख के भी इनका ये हाल। देखिए ना अब इन्होंने अपने सामने समुंदर फटता देख लिया, इन्होंने अपने सामने मनो सलवा उतरता देख लिया, इन्होंने चश्मे फूटते देख लिए, कितना इनके लिए अल्लाह ताला ने इंतजाम किए, तब भी तुम ये कर रहे हो। तो उनने ये दुआ की अल्लाह ताला से, ये उनकी दुआ कबूल नहीं हुई, अल्लाह ने फर्क जुदाई नहीं डाली, उनको इनसे अलग नहीं किया। मगर ये भी एक बात होती है ना, ये कहना असल में है कि अल्लाह ताला अगर अजाब आता है तेरा तो हमारी पकड़ ना हो जाए, इसलिए कि अल्लाह का ये कानून है कि जब अल्लाह ताला किसी कौम पर अजाब करता है तो फिर सब पे ही अजाब आ जाता है, सब उस अजाब की लपेट में आ जाते हैं, तो फिर अल्लाह अपने प्यारों को देखें जो अपनी अंबिया हैं उनको निकाल लेता है वहां से पहले ही। तो उसके बाद अब जब अंबिया नहीं है तो अब क्या होगा, अब नेको बद, जब अजाब किसी कौम पे आता है तो सब नेको बद उसमें ही अगर हलाक हो जाते हैं, तो हदीस में आता है फिर कयामत के दिन अल्लाह ताला उनको जिंदा करेगा उस अमल के मुताबिक, जिस उस नियत के मुताबिक जो भी उनका, या उस अमल के मुताबिक जो वो करते थे उसके मुताबिक वो उठेंगे फिर, यानी नेकों के उसमें से उठेंगे, बद बदों में से उठेंगे। मगर जब अजाब आता है ना तो सब का ही रगड़ा लगता है। तो काला फ इन्ना मुहर्रमतुन अलैहिम, तो फरमाया उसने, किसने, अल्लाह ताला ने, फ इन्ना मुहर्रमतुन अलैहिम, अल्लाह ताला ने अपना फैसला फरमा दिया कि बस फिर मुहर्रमतुन, कि ये किस तरफ है इशारा, इन्ना हा की जमीर का फलस्तीन की तरफ, जिस अर्द मुकद्दस में उन्होंने जाना था उसकी तरफ, कि बस बेशक वो यानी वो जमीन हराम कर दी गई है इन पर, 40 सना, 40 साल के लिए हराम कर दी गई है। ये अब इनको सजा अल्लाह ने दी कि वो चीज जो इनको मिल जानी थी इतनी आसानी के साथ, अगर ये थोड़ी सी हिम्मत दिखाते, वो कितनी दूर चली गई इनसे। और वाकई इंसान की सुस्तियों की वजह से बाज दफा वो ऐसे चांसेस खो देता है कि अरसा दराज तक भी फिर चाहे तो वो चांस वापिस नहीं मिलते, वो तौफीक ही नहीं मिलती। अब क्या है, यती हूं ना फिल अर्थ, यानी अल्लाह ने इनको ऐसे छोड़ दिया, अब मारे मारे फिरते रहो। दूसरा इसको पढ़ने का तरीका ये, आप 3 डॉट्स देखते हैं ना, एक एक तरीका जो मैंने आपको बता दिया कि 40 साल तक इनके लिए हराम कर दी गई, दूसरा तरीका है कि आप वक्फ करें अलैहिम पर, ये इनके लिए हराम कर दी गई ये जमीन, फिर आगे पढ़े 40 सनतन यती हूं ना फिल अर्थ, 40 साल तक ये वो सरगर्दां रहेंगे इस जमीन में, माना दोनों का सेम ही है, 40 साल तक हराम कर दी गई है, 40 साल तक ये भटकते रहे अब यहीं पे। अब क्या था, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, यानी कितनी फ्रस्ट्रेशन की बात है कि ये चलते थे, चल चल के जब एक जगह पहुंचते थे तो पता चलता था कि ये तो वही जगह पे आ गए जहां से चले थे, यानी अल्लाह ताला ने समझ ले इनको कैद कर दिया था उस मैदाने तीह में, इसीलिए इसको मैदाने तीह कहते हैं, क्योंकि ऐसा मैदान जिसके अंदर ये मारे मारे फिरते रहे। अल्लाह चाहे तो क्या, कुछ भी मुश्किल नहीं है उसके लिए, अब निकलना उसे चाहते थे, निकलने की कोशिश करते थे लेकिन वो निकल ही नहीं पाते थे, वो घूम रहे हैं, जाहिर है 40 साल कोई कम अरसा नहीं होता, अब 2-4 महीनों में इंसान तंग आ जाए कि हम जाना किधर को चाहते हैं, हम किधर आ गए, फिर वहीं आ गए। और वाकई इंसान की ना, आपको बताऊं, जिंदगी भी कभी कभी ऐसी हो जाती है कि 40 साल गुजर जाते हैं और वो वहीं का वहीं खड़ा होता है जहां से उसने सफर शुरू किया था, कोई इंप्रूवमेंट नहीं, कोई अपनी इसलाह नहीं, कोई बेहतरी नहीं, कोई चेंज नहीं, वहीं के वहीं है। और ये भी इंसान की अपनी ढिटाई, अपनी बुजदिली, कम हिम्मती, सुस्ती, अल्लाह के दीन के लिए कोई कुर्बानी ना देने के ये जो बातें हैं, ये उसको वहीं का वहीं ले आती हैं वापस जहां से चला था। 40 साल गुजर जाना कोई थोड़ा अरसा नहीं होता, और इस 40 साल में उन्होंने क्या पाया, वहीं घूम घूम के पागल होते रहे, इनको रास्ता नहीं मिल रहा था, वहीं उनके बच्चे पैदा हो गए, बच्चे बड़े हो गए, वे मर भी गए, उनके बच्चे भी जवान हो गए, तब 40 साल का अरसा गुजरा, यानी वो जो पिछली सारी जनरेशन थी जिन्होंने इनकार किया था जाने से, वो सब मर गए। फिर अब जब इंसान कहता है ना, मैंने नहीं करना नहीं करना नहीं करना, तो बस फिर नहीं पड़ जाती है, फिर अल्लाह ताला ने भी उनको नहीं जाना ना तुमने, तो अब तो अल्लाह ही नहीं तुम्हें जाने देगा, अब उनकी किस्मत में ही नहीं रही वो बाबरकत बस्ती, वो मुबारक बस्ती जो जिसमें अल्लाह ने बरकत रख दी है, वो उससे महरूम हो गए, हालांकि वो बड़ी आसान थी पानी। मगर इंसान अगर कोशिश नहीं करना चाहता अल्लाह के रास्ते में, कुछ लगाना नहीं चाहता, जरा सी भी मेहनत करना उसकी तबीयत पे गरां गुजरती है, मैं कैसे कर लूं, हाय मेरे से तो नहीं होता, हाय हमसे तो नहीं होता, तो फिर नहीं होता तो फिर अल्लाह भी वहीं बैठे रहने देता, 40 साल भी गुजर जाते हैं उनकी जिंदगियों के वहीं होते हैं।
सिंबॉलिक हमारे लिए भी, क्या ऐसे नहीं होता? साल हर साल गुजर जाते हैं, कोई तरक्की नहीं होती दीन में, कोई बेहतरी नहीं आती। यती होना फिर अर्द, वो तो बस घूमते रहे। अल्लाह ताला ने मेक श्योर किया कि जो पिछले लोग थे जिन्होंने इनकार किया था वो सारे मर जाएं। जब मर गए और नई जनरेशन आ गई तो फिर यूशा बिन नून उनको लेकर गए और उनको ले जाके फिर वो जगह को फतह किया गया। अब फिर मूसा अलैहि सलाम भी फौत हो गए, हारून अलैहि सलाम भी फौत हो गए और नए लोग थे जो आगे गए। फला तसअल अल कौम अल फासिकीन, है नबी आप मूसा अलैहि सलाम से अल्लाह ताला ने फरमाया आप ना इस कौम के ऊपर अफसोस करें जो नाफरमान कौम है, इसलिए कि जो भी पैगंबर होता है ना वो अपनी कौम के लिए बहुत हमदर्द होता है, और कौम की ये हालात देख के उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। अब देखें आप कितनी उनकी बेबसी, उनकी कि मैं क्या करूं इनके साथ, अल्लाह मेरे पास तो कुछ भी नहीं है अख्तियार, अल्लाह मैं नहीं कुछ कर सकता। तो उनकी बेचारगी को आप देखें और इनकी ढिठाई को देखें कि कितनी थी। तो फिर अब जब इंसान इस किस्म की हरकत करता है तो फिर अंजाम तो आता है फिर अल्लाह की तरफ से भी, वो नेमत छिन गई फिर जो उनको मिलनी थी, वो उससे नहीं फायदा उठा सके और उल्टा क्या हुआ, घूमते ही रहे वहां। तो देखें हम भी अपनी जिंदगियों में कहीं सरगर्दा ना घूमते रहे सिर्फ इसलिए कि हमसे थोड़ी सी एफर्ट नहीं की जाती, थोड़ी सी अपने आप को हिलाया जुलाया नहीं जाता, थोड़ी सी भी मेहनत नहीं की जाती। इस मेहनत से जान छुड़ाने के लिए हम कहीं ऐसा सौदा ना कर बैठे कि जिंदगी का आखिर आ जाए और वहीं के वहीं खड़े हैं और फिर पछताएं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين